समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, मैरी क्रिसमस टू ऑल अवर लिसनर्स एंड मैरी क्रिसमस टू यू रेशमा।
मैरी क्रिसमस दिव्या।
और हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा, जिसमें हम लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है देश के अलग अलग हिस्सों में। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी याद करेंगे आज, जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेशमा तिवारी। रेशमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार दिव्या एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स। सो एज दिव्या मेंशन्ड, यू आर लिसनिंग टू परिक्रमा ऑन एफएम गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर फॉर यू एंड But all of these will be there in the next 30 minutes. Before that, we begin the show with the headlines first. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone of Ken Betwa River Linking Project in Madhya Pradesh.
राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है।
Union Home and Cooperative Minister Amit Shah to dedicate more than 10,000 PACS, Dairy and Fisheries Cooperative Societies to the nation this afternoon.
ईसा मसीह के जन्मदिवस पर आज दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है।
NRI remittances surged to record $11.9 billion in April to October this year, says RBI.
और कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना में 50 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we'll talk about Good Governance Day and International Incoming Spoofed Calls Prevention System. I dream of an India that is prosperous, strong and caring. An India that regains a place of honor in the committee of great nations. This was said by late Sri Atal Bihari Vajpayee. Yes, the nation is celebrating Good Governance Day today. The day is observed annually on December 25 in India to honour the birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and to promote the importance of governance that serves citizens effectively and transparently.
Or this यही अटल बिहारी वाजपेयी ने एक और बात कही है रेशमा, कि इस देश को लेकर मेरी एक दृष्टि है, उनका एक विजन था, एक ऐसा भारत जो भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो।
यस,
गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को मनाने की घोषणा के बाद आज के दिन यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने के लिए तय किया था।
राइट, दिस ईयर द नेशन इज ऑब्जर्विंग द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। दिस इज द डे इज ऑब्जर्व्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मैसेस, स्पेशली अमंग द यंग जनरेशन अबाउट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इट प्रमोट्स सिटीजन सेंट्रिक एज वेल एज इफिशियंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी।
सुशासन दिवस की स्थापना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान और उनकी लोकतांत्रिक मूल्यों, समावेशी नीतियों और दूरदर्शी नेतृत्व को सम्मानित करने के उद्देश्य से की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को वर्तमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। सार्वजनिक जीवन में श्री वाजपेयी का उत्थान उनकी राजनीतिक कुशलता और भारतीय लोकतंत्र दोनों के लिए एक श्रद्धांजलि है। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता के प्रबल समर्थक श्री वाजपेयी एक दूरदर्शी, विकासशील भारत, एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र में विश्वास करते थे जो विश्व में अपने उचित स्थान के प्रति आश्वस्त है।
Yes, he went on to serve as the Prime Minister of India on three times. First in 1996 for a term of 13 days, followed by a 13-month term between 1998 and 99, and later a full term of 5 years between 1999 to 2004.
इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर विदेश मंत्री और संसद की विभिन्न महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में भारत की स्वतंत्रता के बाद की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में सक्रिय भागीदार रहे और वाजपेयी अपनी प्रसिद्ध कविता और लेखन के लिए भी जाने जाते हैं।
टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता, गीत नया गाता।
वाजपेयी अ भारत रत्न अवार्डी वॉज रिवियर्ड फॉर हिज एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट economic reforms and effective governance during his tenure as Prime Minister. Vajpayee's first brush with nationalist politics was in his student days when he joined the Quit India movement of 1942, which hastened the end of British colonial rule.
राजनीति विज्ञान और कानून के छात्र जीवन में ही उन्होंने कॉलेज में विदेश मामलों में गहरी रुचि विकसित की और इस रुचि को उन्होंने वर्षों तक पोषित किया और विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कुशलता से इसका उपयोग किया।
Prime Minister Narendra Modi has said that former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee stands tall as a statesman who continues to inspire countless people. Paying his tributes to Vajpayee on his 100th birth anniversary, Mr. Modi said that the nation will always be grateful to Atalji for being the architect of India's transition into the 21st century.
प्रधानमंत्री ने कहा कि साधारण परिवार से आने वाले वाजपेयी को आम नागरिक के संघर्ष और प्रभावी शासन की परिवर्तनकारी शक्ति का एहसास था। ये दिन सार्वजनिक अधिकारियों को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ नागरिकों को बेहतर प्रशासन की मांग करने के लिए सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
The objectives of Good Governance Day is to promote awareness about the need for good governance in public administration, encourage efficient and effective delivery of public services, inspire accountability and transparency among government officials, and honor Vajpayee's legacy of ethical leadership and democratic values.
सुशासन दिवस केवल वाजपेयी जी की विरासत का उत्सव मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि ये नागरिकों और अधिकारियों को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करने का भी एक महत्वपूर्ण दिन है। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, सूचना का अधिकार अधिनियम और ई गवर्नेंस सेवाएं जैसी पहल शासन को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए चल रहे प्रयास को दर्शाती हैं।
प्रोग्राम्स लाइक प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रमोट फाइनेंशियल inclusion and accountability, embodying the principle Vajpayee stood for. Citizens play a key role in ensuring good governance by participating in democratic processes, staying vigilant against corruption and engaging in initiatives that promote transparency.
आरटीआई जैसे मंच व्यक्तियों को नैतिक और उत्तरदायी शासन की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। सुशासन दिवस प्रभावी नेतृत्व शक्ति और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की सामूहिक जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी की याद दिलाता है, जो वास्तव में अपने लोगों की सेवा करता है। हमारा लक्ष्य अनंत आकाश जितना ऊंचा हो सकता है, लेकिन हमारे मन में एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने का संकल्प होना चाहिए, क्योंकि जीत हमारी होगी। ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और मैं चाहता हूं कि भारत एक महान राष्ट्र बने, शक्तिशाली बने, संसार के राष्ट्रों में प्रथम पंक्ति में आए, ऐसा सपना था अटल बिहारी वाजपेयी का।
Yes, and now, Divya, in Dateline, we're also talking about international incoming spoofed calls prevention system.
जी, और देख रहे हैं हम आजकल रेशमा की जिस तरीके से बहुत सारी फर्जी कॉल्स आ रही हैं लोगों को, और उसके बाद लोगों से कई तरह से डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। जो उपभोक्ता हैं वो कई सारे फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं।
Absolutely.
तो इसी पर आज हमारा डेडलाइन का दूसरा टॉपिक है। तो इसके लॉन्च ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको लॉन्च किया है।
द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डीओटी हैज अनवेल्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग सिस्टम, the International Incoming Spoofed Calls Prevention System. This clever system identifies calls that pretend to come from Indian numbers but are in fact from cyber criminals abroad manipulating caller IDs.
आजकल आप सब लोग जब कॉल कर रहे होंगे तो आपको एक रिंगटोन सुनाई देता होगा पहले, सावधान, अगर आपको अनजाने नंबर से पुलिस जज या सीबीआई के कॉल आते हैं, तो ये टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है उसके, और इसको लॉन्च करने के केवल 24 घंटे के भीतर परिणाम चौंका देने वाले थे, क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा 1,35,00,000 फर्जी कॉल की पहचान की गई और उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। ये सभी नकली अंतर्राष्ट्रीय कॉलों का लगभग 90% हैं। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, प्रभाव और भी ज्यादा स्पष्ट और प्रभावी होता गया। दिसंबर तक इन फर्जी कॉल्स की संख्या में भारी गिरावट के साथ महज 6,00,000 रह गए, और ये साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत है वाकई में।
बट द फ्रॉडस्टर्स वर क्विक टू अडैप्ट। इंस्टेड ऑफ स्पूफिंग इंडियन नंबर्स, दे स्टार्टेड कॉलिंग डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेशनल नंबर्स, वंस स्टार्टिंग विद प्रीफिक्सेस लाइक +8, +85 और +65। द टैक्टिक वाज डिफरेंट बट द गोल वाज द सेम, इम्पर्सोनेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू डिसीव एंड डिफ्रॉड।
और जवाब में डीओटी ने इस नए खतरे से निपटने के लिए विशेषज्ञों और हितधारकों की एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया है। उनकी सिफारिशों में एक सरल लेकिन प्रभावी समाधान है। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कॉल प्राप्त होती है तो दूरसंचार प्रदाताओं को स्क्रीन पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल लेबल प्रदर्शित करना चाहिए। यह उपयोगकर्ताओं को सचेत करेगा कि ऐसी कॉल संभवतः पुलिस या ट्राय या आयकर विभाग जैसे भारतीय अधिकारियों से नहीं आ सकती हैं।
Yes, the DOT continues to urge citizens to stay cautious. If a call comes from an unfamiliar international number and claims to be from an Indian government agency, the safest course of action is to ignore it or report it through the Chakshu facility on the Sanchar Sathi portal.
बिल्कुल, चक्षु यानी कि आंखें, तो चक्षु फैसिलिटी दी गई है संचार साथी पोर्टल के जरिए। डीओटी के प्रयास वाकई में रंग ला रहे हैं, और न केवल फर्जी कॉलों में नाटकीय रूप से कमी आई है बल्कि जागरूकता अभियान भी जोरों पर है। अगले 3 महीनों के लिए दूरसंचार ऑपरेटर दिन में कई बार साइबर अपराध जागरूकता संदेशों को कॉलर ट्यून के रूप में चलाएंगे, जो सभी को सतर्क रहने की याद दिलाएंगे।
फॉर दोज हू हैव फॉलन विक्टिम टू सच स्कैम्स, help is at hand. Incidents can be reported at the cybercrime helpline 1930 or through the portal cybercrime.gov.in. Every report strengthens the fight against cyber fraud.
जी हाँ, अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर सकते हैं, और पोर्टल है cybercrime.gov.in, इस पर भी लॉगिन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 115वें एपिसोड के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को डिजिटल अरेस्ट के बारे में चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर लोगों को धमकी नहीं देती है या पैसे की मांग नहीं करती है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल आता है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं और पुलिस की हेल्प लें, और बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आपके लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास कर रहा है।
The Ministry of Communications is leaving no stone unturned in its mission to protect Indian citizens. From innovative technologies to public awareness, the message is clear. Cyber criminals will find it harder than ever to misuse telecom resources for fraud.
तो अगली बार जब भी आपके फोन पर किसी अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय नंबर की घंटी बजती है तो इस कहानी को याद रखें, सतर्क रहें, सूचित रहें और किसी भी संदिग्ध चीज की रिपोर्ट करें। हम मिलकर घोटालेबाजों को मात दे सकते हैं। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो सबसे पहले चलते हैं देश के पश्चिमी हिस्से कच्छ में, जानते हैं कि वहां पर अभी हमारे जो संवाददाता हैं अशरफ भुज एक विशेष रिपोर्ट लेकर के आप सबके सामने हाजिर हैं।
सीमावर्ती कच्छ जिला कई प्रकार की हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ में कई कारीगर हैं जिन्होंने अपनी कला को ग्रामीण स्तर से विश्व स्तर तक पहुंचाया है। ऐसी ही एक 400 साल पुरानी कला है कच्छ रोगान आर्ट, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कच्छ रोगान आर्ट एक अनूठी और सुंदर कला है, जिसमें कपड़े पर पहले से कोई डिजाइन बनाए बिना एक विशेष पेंटिंग तकनीक का उपयोग करके प्राकृतिक रंगों से सीधे ही जटिल डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं। यह एक दुर्लभ कला है और इस कला के साथ फिलहाल बहुत कम कारीगर जुड़े हुए हैं। हालांकि यह कला पिछले कुछ वर्षों से लोकप्रियता हासिल कर रही है, जिससे इस कला से जुड़े कारीगरों को रोजगार के साथ साथ प्रसिद्धि भी मिल रही है। 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी अमरीका के दौरे पर गए थे, तब तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को व्हाइट हाउस में रोगन कला की कृति द ट्री ऑफ लाइफ उपहार के रूप में दी थी। रोगन कला के कारीगर अब्दुल गफूर खत्री ने इस कृति को तैयार किया था। कच्छ के निरोना गांव में रहने वाले अब्दुल गफूर खत्री, जिनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, आकाशवाणी से बात करते हुए वो बताते हैं,
किसी समय रोगन आर्ट को कोई जानने वाला नहीं था, आज देश और दुनिया में मिनिस्ट्री पूरी जानती है। और रोगन आर्ट को जो फेमस हुआ वो माननीय नरेंद्र मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे, तब से दुनिया के डेलीगेट्स को वीवीआईपी को गिफ्ट देते देते, और पीएम बनने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को और व्हाइट हाउस में भी ट्री ऑफ लाइफ का गिफ्ट किया, तो उनके माध्यम से काफी इस कला को जान मिली है।
आमतौर पर पुरुष प्रधान माने जाने वाली इस कला के क्षेत्र में महिलाओं को भी रोजगार मिले, इसके लिए अब्दुल गफूर खत्री ने पिछले 15 वर्षों में 400 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षित किया है। यह कला लुप्त ना हो और इसकी विरासत आगे बढ़ती रहे, इसके लिए सरकार के साथ साथ ऐसे कारीगर भी रोगन कला को जीवित रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। परिक्रमा के लिए बूथ से अशरफ नथवाणी।
In Mizoram, Christmas is being celebrated with enthusiasm, religious fervor and solemnity. The day is celebrated across the state, wherein believers of Christian faith have attended church services and engaged in religious activities throughout the day. The capital, Aizawl city, wore a deserted look at as transport services came to a grinding halt and few are seen on the roads. Christmas celebration marked a high point of the year for the people of Mizoram. We have more from our Aizawl correspondent.
With the last calendar month setting in, people are engaged in charity works and showing love and compassion to the poor and the needy of the society. Governor Dr. Haribabu Kampampati, Chief Minister Laldu Oma, church bodies and various NGOs such as YMA led the people in offering charity to various orphanage homes and relief centers in various parts of the state. Greeting the people of Mizoram on the occasion of Christmas, Governor Dr. Haribabu Kampampati said,
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day.
Mizoram is known for its vibrant Christmas celebrations with its own unique blend of religious devotion and traditional fervor. The tradition of community bonding during Christmas is noteworthy, and Christmas songs sung in the local languages add a cultural touch to the festivities. The practice of exchanging gifts and greetings reflect the Christmas spirit of generosity, and it is beautiful to see communities reaching out to the less fortunate.
Christmas is celebrated for 2 days in the state, with all churches across the state organizing community feasts on the second day to mark the significance of the occasion. Marian Zothanbui, Akashvani, Aizawl.
Desh aaj Shraddheya Atal Bihari Vajpayee ki 100vi jayanti mana raha hai. छत्रपति संभाजी नगर की निवासी रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मंगला वैष्णव ने अटल जी की कविताओं का मराठी अनुवाद किया है। इन अनुवादित कविताओं की पुस्तक अटल जी को भेंट करने का अपना अनुभव वे आकाशवाणी के साथ साझा करती हैं।
कविता और साहित्य में रुचि रखने वालों में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अटल जी की कविताएं न पढ़ी हो। अटल जी की मेरी 51 कविताएं, यह पुस्तक ऐसी अनेक रचनाओं से भरी पड़ी है जो आज भी प्रेरणा देती है। छत्रपति संभाजी नगर की निवासी डॉक्टर मंगला वैष्णव ने इन्हीं कविताओं का मराठी में अनुवाद किया है। इन अनुवादित कविताओं की पुस्तक मंगला जी ने अटल जी को दी थी। अटल जी से भेंट का अपना अनुभव डॉक्टर वैष्णव ने आकाशवाणी के साथ साझा किया।
मैंने माननीय अटल जी के मेरी 51 कविताओं का मराठी में अनुवाद किया था। उस समय मन में आपसे मिलने की कोई भी कामना नहीं थी, परंतु एक मित्र ने मुझे कहा यह पुस्तक अटल जी को स्वयं अर्पण करें। मुझे यह असंभव सा लग रहा था, परंतु मैंने प्रयास शुरू कर दिया। अनेक प्रयासों के पश्चात मुलाकात तय हो गई। मेरे लिए वो एक अद्भुत अनुभव था। सामान्य महिला और प्रधानमंत्री से मिलती है। मैंने मेरी मराठी कविताएं आपको सुनाई। आपने अपना हिंदी पुस्तक और मेरा मराठी पुस्तक हाथ में रखकर वो सुनी। आपने मुझे प्रोत्साहित किया। आपको मराठी भाषा समझती है ये मुझे मालूम था। मेरे पुस्तक पर आपने संदेश लिखा और हस्ताक्षर किए।
अपने ही एक जन्मदिन पर की हुई कविता में नए वर्ष के संकल्प पर अटल जी लिखते हैं, सरस्वती की देख साधना लक्ष्मी ने संबंध न जोड़ा, मिट्टी ने माथे का चंदन बनने का संकल्प न छोड़ा, नए वर्ष की अगवानी में टुकरुक ले कुछ ताजा हो ले, आओ मन की गांठें खोले, आओ मन की गांठें खोले। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से हर्षवर्धन दीक्षित।
And listeners, now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Today, we remember Bhupendranath Datta, well-known Indian sociologist and revolutionary freedom fighter. Born in Calcutta in 1880, Bhupendranath Datta was the younger brother of Swami Vivekananda. His religious and social beliefs were shaped by Brahmo Samaj, which included belief in a casteless society, in a single god, and revolts against superstition.
In 1902, he joined the Revolutionary Society of Bengal that was directed by Pramathnath Mitra. During this period, he became a close associate of Sri Aurobindo and Barindra Ghosh. He was also the editor of a newspaper called Yugantar Patrika. In 1907, Datta was arrested by British police with the charge of sedition and was sentenced to 1 year imprisonment.
During World War I, Bhupendranath went to Germany and started revolutionary and political activities there. In the annual conference of Indian National Congress, organized in Karachi in 1930, he proposed a fundamental right for Indian farmers, which was later accepted by the Congress Committee. He also chaired two All India Trade Union Congress's annual conferences.
Being an active member in political activities, Bhupendranath was arrested several times by the British police. He breathed his last on the 25th of December, 1961. AIR News salutes the great son of the soil. December 25 is also the birth anniversary of Mahamana Madan Mohan Malviya. An educationist and a lawyer, Malviya was an important figure in the non-cooperation movement. He renounced his well-established practice of law in 1911 to serve the cause of education and social service. He participated actively in the non-cooperation movement. In 1928, he joined Lala Lajpat Rai, Jawaharlal Nehru and many others in protesting against the Simon Commission.
Simon Commission! Simon Commission! Bharat Mata Ki!
During the civil disobedience movement, he was arrested in 1932. Malviya was the only leader of the Indian National Congress who served as its president for 4 terms during the freedom struggle. Malviya was the principal founder of the Banaras Hindu University in 1916. He was conferred the Bharat Ratna along with former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in 2015.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
Yes, in cricket, India will take on Australia in the fourth test of the Border Gavaskar Trophy at Melbourne tomorrow. The match is scheduled to begin at 5 a.m. IST. Both the teams have won one match each in the 5-match series.
और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। श्रोताओं, आज सबसे पहले याद कर रहे हैं
चार्ली चैपलिन। यस, सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, द इंग्लिश कॉमिक एक्टर, फिल्म मेकर एंड कंपोजर हु रोज टू फेम इन द एरा ऑफ साइलेंट फिल्म। ही वाज बोर्न ऑन 16 अप्रैल 1889। ही बिकेम अ वर्ल्ड वाइड आइकन थ्रू हिज स्क्रीन पर्सोना द ट्रैम्प एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ of the film industry. His career spanned more than 75 years, from childhood in the Victorian era until a year before his death in 1977, and encompassed both adulation and controversy. Chaplin's childhood in London was one of poverty and hardship, as his father was absent and his mother struggled financially, and he was sent to a workhouse twice before the age of nine.
और आज ही बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री साधना की पुण्यतिथि है. उन्होंने फिल्म अबाना से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. साधना ने हिंदी फिल्मों से जो नाम और मुकाम हासिल किया वो किसी से छुपा नहीं है. साधना का पूरा नाम साधना शिवदासानी था. अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और बॉलीवुड में वो अपने जमाने की शीर्ष अभिनेत्री रही. उन्होंने मेरा साया, वो कौन थी और वक्त जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया और 1960 में लव इन शिमला फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म ने फिल्म को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया. हालांकि साधना एक और चीज के लिए फेमस है, वो है उनका हेयर स्टाइल जो कि फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था और उस हेयर स्टाइल को ही लोग साधना कट के नाम से बुलाने लगे थे. आइए सुनते हैं उनकी फिल्म आरजू का ये डायलॉग.
किस प्यार की याद से जिंदा रह सकते हो जिस प्यार को तुमने खुद ठुकरा दिया. तुम्हें मेरी वो एक बात याद आ गई लेकिन इतना याद नहीं आया कि एक अनजान लड़की ने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, पता नहीं पूछा और जिंदगी रख दी तुम्हारे कदमों में. तुम वो भूल गए जो कहा करते थे कि शरीर मर जाते हैं मगर आत्मा और प्यार हमेशा जिंदा रहते हैं.
और साधना न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि एक्टिंग में भी बहुत रोमांटिक अंदाज और कई अंदाज में वो दिखाई देती थी. आइए उन पर फिल्माया गया ये गीत सुनते हैं.
And listeners, 25th December is also the death anniversary of Chakravarti Rajagopalachari or C. Rajagopalachari, who was born on 10th December 1878. He was a politician, independence activist, lawyer, writer, historian and a statesman. Informally called Rajaji or CR, he was the last Governor General of India as India soon became a republic in 1950. Furthermore, he was the first Indian-born Governor General since before him the post were held by British nationals only. And it is also the death anniversary of Gyani Zail Singh, the seventh president of India, serving from 1982 to 87. Prior to his presidency, he was a politician and the Indian National Congress with the Indian National Congress Party and held several ministerial posts in the Union.
और आज ही अभिनेता प्रेम अदीब और संवाद लेखक प्रेम अदीब की पुण्यतिथि है. 40 के दशक में प्रेम अदीब एक बहुत ही चोटी के अभिनेता थे. भारत की पारंपरिक मूल्यों में शामिल फिल्मों में प्रेम अदीब और शोभना समर्थ ने आदर्श राम और सीता का रोल किया है. और इसके अलावा आज भारत के जाने माने नाटककार, पटकथा लेखक, फिल्म और नाट्य निर्देशक सत्यदेव दुबे ने भी आज ही इस दुनिया को अलविदा कहा था. उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया और कई पटकथाएं लिखी. विदेश में हिंदी के अकेले नाटककार थे जिन्होंने अलग अलग भाषाओं के नाटकों को हिंदी में लाकर उन्हें अमर कर दिया. और अब बात करते हैं जन्मदिन की. धर्मवीर भारती का को गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग जैसी पुस्तकों के साथ हिंदी साहित्य में ताजगी की बहार लाने वाले लोकप्रिय लेखक के तौर पर हम याद करते हैं. आज उनका जन्मदिन है, जन्मतिथि है.
And Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya was born on 25th December 1861, an educationist and politician notable for his role in the Indian independence movement and as the four times president of Indian National Congress.
और आज संगीतकार नौशाद अली की जयंती है. अपनी पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपने संगीत का जादू उन्होंने बिखेरा. नौशाद ने केवल 67 फिल्मों में ही संगीत दिया और उनकी फिल्मों उनका जो संगीत का जादू था मुगले आजम, बैजुबावरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन, संजोग जैसी फिल्मों में दिखाई देता है. आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत.
मुरलिया बाजे रे गिरधर
प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना.
particularly known for popularizing the use of classical music in films. Naushad started off as an independent musical director in Prem Nagar in 1940. His first musically successful film was Ratan in 1944, followed by 35 Silver Jubilee hits, 12 Golden Jubilee and 3 Diamond Jubilee mega successes.
और इसके साथ ही श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो अनुमति दीजिए दिव्या तोमर और रेशमा तिवारी को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का। अगर इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर। इसके साथ ही हम सबको दीजिए इजाजत, नमस्कार।